अतियार अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। प्रयास अत्यधिक उद्यम च तथा प्रजल्प व्यर्थ की बातें करना। नियम विधि विधान आग्रह अत्यधिक आसक्ति या आग्रह अत्यधिक उपेक्षा। जनसंग सांसारिक व्यक्तियों की संगति च तथा लौल्यम अत्यधिक अभिलाषा या लालच च तथा सड़बी इन छह के द्वारा भक्ति भक्ति विनश्यति नष्ट हो जाती है। मेरे पीछे दोहराइए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च सर्वीर भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च सर्वीर भक्ति विनश्यति। अनुवाद। जब कोई निम्नलिखित छ क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। एक, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दो, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीन, सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। चार, शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अर्पितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांच, ऐसे सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा छः, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालच करना। ओम अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन चलाते चक्षुर उन्मीलित तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदामयां ददान्ति सुखदान्तिकम्। अत्याहार अति आहार आहार मीन्स खाना। और प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं अति आहार मतलब कि जरूरियात से ज़्यादा धन का संग्रह करना, तो इससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। क्यों कि अतिहार का अत्याहार करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो नींद में और आलस में जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिग बेली जिसकी हो जाती है उसका मतलब यह है कि वो आध्यात्मिक जीवन में वो प्रगति नहीं करता। जिसकी भी बिग बेली है उनका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं है, इसलिए उनकी उनका पेट बड़ा हो जाता है। अत्याहार, और अत्याहार करने से नींद आएगी और निंद निंद्रा ये भौतिकता में हमको प्रवृत्त करेगी और नींद नहीं आएगी, तो जो अति आहार हमने किया है, ज़्यादा खाया है, तो वो पचाने में हमारी शक्ति व्यय हो जाएगी। जो शक्ति कृष्ण भावना भावित होने में लगानी है, वो शक्ति निंद्रा और खुराक पचाने में जाएगी। इसीलिए अति आहार ये आध्यात्मिक जीवन में बाधा आरोप है। जैसे हमारे सठ गोस्वामी मिताहारी थे, कहा जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज थोड़ा सा बटर या छाछ, बटर मिल्क पी के अपना भजन करते थे, और वैसे भी हर गोस्वामी मधुकरी करके खाते थे, तो मधुकरी में रोटी मिलती है और इधर उधर थोड़ा सा खा लिया, तो अति आहार करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, विनश्यति है। और अति आहार मतलब कि धन संग्रह करना, सो धन संग्रह करना है या तो दुनियावी चीज जो बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, तो उनके लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे धन संग्रह करना, प्रभुपाद जी कहते हैं अतिहार, सो धन कमाना है तो धन के पीछे समय भी चाहिए, धन कमाने के लिए समय भी चाहिए, तो वो समय जो हम भगवान की भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए उपयोग कर सकते, वो समय धन कमाने के पीछे हम दुर्व्यय कर देते हैं। तो धन कोई आसान बात नहीं कि हम कमा लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि धन कमाना उसमें बहुत समय लगाना होता है। आसानी से ठीक है, आपका लक है तो 1-2% लोगों को आसानी से धन मिल जाता है, या तो आप गोल्डन स्पून मुंह में लेके जन्मे हो, आपका जन्म कोई श्रीमंत भक्तों के यहाँ हुआ है, तो आसानी से धन मिल जाता है। लेकिन फिर भी धन आसानी से मिल गया, बाद में भी तो समय धन को संचार, धन को सुरक्षित रखने के लिए करने में हमारा समय व्यतीत होता है। चिंता, कौन लेके जाएगा, कोई माया के रूप में आएगा, आएगी व्हाटएवर, और माया कहेगी माय डियर सर व्हाई डोंट यू स्पेंड इट फॉर मी, तो चिंता लगी रहती है, मे बी गवर्नमेंट ले जाएगी। सो अति आहार मीन्स अति खाना और अति धन कमाना, तो धन कमाने में हमारा समय फिजल जाएगा, हमारी जिंदगी बेकार में जाएगी, कमा लेने के बाद भी बेकार जाएगी, क्योंकि उनके पीछे हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अति आहार प्रयासश्च, प्रयास करना, कोई भी दुनियावी चीज जो प्राप्त करने के बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए प्रयास करना। पहले प्रभुपाद अति आहार में कहते हैं कि अगर मनुष्य है वो लोभी होता है, कहते हैं कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान ग्रहण करने वाले जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं, फलतः पशु जगत में सामान्यतया न कोई आर्थिक समस्या उठती है न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुनेगी और चली जाएगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा के ले जाएगा, अतिया संग्रह करेगा, उसके पेट में जितना आएगा खाएगा और जो बचेगा उसे भंडारे में रख देगा। इस समय सारा विश्व इसके कारण कष्ट उठा रहा है, साम्यवादी और सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट धन संग्रह में लगे हैं और साम्यवादी सारा धन सबको एक तरह देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों सिस्टम खराब है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में एक घंटा दो घंटा डेढ़ घंटा ट्रैवलिंग में लगाते हैं, आना जाना तीन घंटा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यह कहते हैं कि अत्याहार नहीं करना मतलब कि थोड़ी सी भूमि हो, भूमि बाद थोड़ा सा हो और दुधारू गाय हो तो शांति से पीसफुल लाइफ शांति से वो अपना जीवन और कुटुंब का भरण पोषण वो कर सकता है, दूर दूर तक भागदौड़ नहीं होनी थी। तो ये है अत्याहार। उनको अत्याहार को अगर हम निकालना चाहते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि सादा जीवन और उच्चतर विचार करना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बहुत सरल जीवन, सादा जीवन और उच्चतर विचार। सो सादा जीवन है कि थोड़ा भूभाग हो और दुधारू गाय हो और मन में संतोष हो, बाकी का जो जीवन सुबह शाम वो भगवत भक्ति में हम लगा सकते हैं। तो प्रयासश्च मतलब कि फिजूल का प्रयास करना, कोई भी दुनियावी चीज प्राप्त करने में बहुत बहुत कठिनाइयां झेलनी होती है तो वो उसको बोलते हैं प्रयास। जो आसानी से हमको भाग्यवत हमारे कर्मवत मिल गया उनसे संतुष्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने से भक्ति नष्ट हो जाएगी। कोई एक नौकरी करता है एक दिन में और दो नौकरी दिन में करता है, तीन नौकरी पार्ट टाइम दिन में करता है, तीन नौकरी साथ में करता है, एक फुल और दो पार्ट टाइम, और धन कमाने में वो लगता है। यहाँ इंडिया में भी देखा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में या अमेरिका वगैरह देशों में तो होता ही होता है नए जो इमिग्रांट्स वगैरह वगैरह। तो यह है प्रयास, ओवर एंडेवर प्रयास करना। धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पति, धर्मस्य ही एकांतस्य काम लाभाय ते स्मृत। धर्म से जो उपार्जन होता है वो काम लाभाय ते नहीं है, काम लाभ के लिए नहीं है लेकिन अपवर्ग के लिए है। अपवर्ग मतलब कि कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए, ये अपवर्ग है। कृष्ण धाम जाने के लिए, कृष्ण भक्ति में पारंगत प्रवीण होने के लिए धन का उपयोग करना चाहिए। जो धर्म से धन कमाया है उनका उपयोग अपवर्ग में होना चाहिए, नहीं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। न अर्थो अर्थाय कल्पते, धर्म से एकांतस्य काम लाभाय ते स्मृत। तो धर्म से जो भी उपार्जन हुआ वो श्री कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, कृष्ण भक्ति में उनका उपयोग होना चाहिए। दुर्भाग्यवश लोग धन का उपयोग कृष्ण भावना मृत का अनुशीलन करने में नहीं करते, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। सही देखा जाए तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमको तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। धर्म का उपयोग धन का उपयोग ये तत्व जिज्ञासा में होना चाहिए, भक्ति के लिए होना चाहिए। तो यह प्रयास, फिजूल का प्रयास करने से समय बर्बाद होगा। समय भागवत में लिखा है कि एवरी राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ अ सन टेक्स अवे ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ अ मटेरियलिस्टिक पीपल. उद्यान अस्तान आयु हरति वै पुंसाम उद्यान अस्तान च न सब तस्यार्थे यत क्षणो नीत. उत्तम श्लोक वार्ता. उत्तम श्लोक से कृष्ण की वार्ता में हमको ये धर्म से उपार्जन जो होता है उनका लगाना चाहिए. प्रजल्पो नियम आग्रह. प्रजल्पो, प्रजल्प मतलब कि जो ग्राम्य वाता है. कल हमने देखा था प्रजल्प मेढक की तरह, मेढक प्रजल्प करता रहता है, फिजूल का बोलता रहता है, और फिजूल का बोलने से वो अपना मृत्यु को निमंत्रित करता है. सांप आता है और उसको खा जाता है. प्रजल्प, तो ये प्रजल्पों से भक्ति नाश होती है. जैसे टेलीविजन देखना है प्रजल्प है, और प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य शूद्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं. जैसे कि ग्राम्य वार्ता करनी, किसी की चुगली करनी, द्वेष करना, बातें फिजूल की बातें, मूवी की बातें, आज सचिन ने छक्का लगाया और क्रिकेट मैच है, तो कितना प्रजल्पो करेंगे लोग. वहाँ से तो प्रजल्पो रेडियो में से टीवी में प्रसारित होगा ही होगा. वहाँ जो स्टेडियम है वहाँ लोग प्रजल्पो के लिए इकट्ठे हुए हैं, और सारी दुनिया टीवी के आगे बैठ जाएगी. सब प्रजल्पो, मास केल प्रजल्पो. तो अगर हमें प्रजल्पो में भाग लेते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि प्रजल्प करते हैं तो उनकी जो सब इम्प्रेशन है वो सब हमारे मन में बुद्धि में रहेगी, और वो बाहर निकलती रहेगी. प्रजल्प बाहर निकलता रहेगा, तो इससे भक्ति नष्ट हो जाती है. प्रजल्पो नियम आग्रह, और नियमों का आग्रह रख, खोटे खोटे अलग अलग नियमों का आग्रह रख. नियमों का आग्रह का मतलब यह है कि तुरंत अपने लाभ के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को स्वीकार करना. अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए नियम अपनाने, और भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवान के लिए नियमों का त्याग करना. तो इनको बोलते हैं नियमाग्रह. नियमों का पालन हम इसलिए करें कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण भावना भावित हो, इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए. अगर नियमों का पालन करने से कृष्ण भक्ति में हम प्रगति नहीं करते हैं तो वो नियमों को त्यागना चाहिए. जैसे कि अभी भी मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं हमारे इस्कॉन में वैष्णव गण हैं दीक्षित, तो वो पहले से बेड़िया गाता, पहले से जो चला आता है वो अभी भी कर रहे हैं. जैसे देवी देवताओं की उपासना है, अपने कुछ डर से मारे, डर के मारे, इसलिए नहीं कि उनको कुछ चाहिए देवी देवताओं से, लेकिन डर है उनको कि मैं करता आया हूँ तो नहीं करूँगा तो ये देवी देवता ये सब नाराज हो जाएंगे. तो ये नियमों का आग्रह कि कृष्ण भगवान, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है. भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सब कर्म कृत होते हैं. यथा तरो मूल निषेचने तृप्यन्ति तदस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपचार नथेन्द्रियाना तथैव सर्वे हनाम अच्युतेज. श्री कृष्ण भगवान का भजन पूजन भक्ति करने से सब देवी देवता तृप्त हो जाते हैं. जैसे कि पेड़ के मूल में, जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो उनका पत्ता, फूल, फल, टहनियाँ सब तृप्त हो जाता है. तो ये नियम फॉलो करना चाहिए, ये श्लोक फॉलो करना चाहिए. उससे उल्टा वो क्या करते हैं को हम कई पीढ़ियों से उपासना करते आए हैं तो चालू रखो. लेकिन कृष्णा भक्ति जो सिखाई जाती है इस्कॉन में उसके मुताबिक नियम फॉलो नहीं करते। तो ये नियम आग्रह है। जैसे कि उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत थक गए थे और गंभीरा में जो छोटा सा दरवाजा है तो दरवाजा के बीच में आधा शरीर अंदर आधा शरीर बाहर ऐसे सो गए, गाढ़ निंद्रा में सो गए और उनके सेवक गोविंद हर रोज उनको दोपहर को पग चंपी करता था, मसाज करता था। तो भगवान के चरणारविंद अंदर रूम में है और सर बाहर है, कैसे किया जाए? तो खान पान से पहले करता था, खान पान किया ने और उनने छलंग लगाई चैतन्य महाप्रभु पर और छलंग लगा के अंदर गए और बाद में भगवान का चरण दबाने लगे, मसाज करने लगे और मसाज के बाद वो अंदर बैठे रहे। गंभीरा छोटा सा रूम है, छोटा सा चैतन्य महाप्रभु का रूम है तो अंदर बैठे रहे। दूसरा दरवाजा था ना और खान पान बाहर था तो जब चैतन्य महाप्रभु उठे तो बोले कि आप अंदर कैसे? तो बोले मेरे सेवा थी, सेवा करने के लिए अंदर आए कैसे? आपके ऊपर से तो नियम तोड़ दिया, भगवान के ऊपर से गुजरना नहीं चाहिए, छलांग नहीं लगाना चाहिए। कोई भी जीव मनुष्य उनके ऊपर से शरीर ऊपर से छलांग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें आत्मा परमात्मा कृष्ण सब कोई है शरीर में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आए कैसे छलांग लगा के? तो नियम तोड़ दिया, तो आपने खाया क्यों नहीं? तो कि मैं मेरा पेट की खातर, मैं मेरे इंद्रिय तृप्ति नहीं लेकिन खान पान के खातर फिर से आपके ऊपर छलांग लगाऊं वो हितावह। तो नियम आग्रह नहीं रखा कि भाई भगवान के ऊपर से छलांग लगाएंगे मुझको पाप लगेगा, ये होगा, नियमों का आग्रह नहीं रखा। तो नियमों का आग्रह नहीं रखना चाहिए। जो नियम कृष्ण भक्ति में हमको आगे बढ़ाते नहीं हैं वो नियमों का आग्रह नहीं रखना चाहिए। जैसे कि दूसरा उदाहरण मिलता है कि जो गोपीगण है तो एक दिन कृष्ण भगवान को सर दर्द हुआ तो नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान आपके सरदर्द की कुछ दवाई बताओ, मैं दवाई करूं। तो भगवान कहते हैं कि दवाई एक ही है, मेरे भक्त जो हैं उनके चरणों की रज अगर मेरे सर पे लगाई जाए तो ये सर दर्द में। तो पहले नारद जी रानियों के पास 16,108 रानियों के पास गए लेकिन रानियों ने कहा कि अगर हमारे पति देव को आप हमारे चरणों की रज सर पर लगाओगे तो हम कौन से नरक के भागीदारी होंगे, कौन से नरक में जाएंगे हम, ये नहीं हो सकता। नियमों का आग्रह रखा क्योंकि पत्नियां हैं, पति हैं, उनका उनकी रज पति के सर पर नहीं जा सकते। तो बाद में गोपियों के पास जाते नारद मुनि तो गोपियों ने नियम तोड़ दिया। हमारे प्रियतम के सर के दर्द का उपाय अगर हमारे चरणों की रज है और हमको नरक मिले चाहे मिले तुरंत दे दिए। तो नियमों का आग्रह नहीं रखना चाहिए। नियमों का आग्रह भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रखना चाहिए। हाँ जी, प्रसन्नता के लिए तोड़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की प्रसन्नता होती। तो नियम का आग्रह भगवान की प्रसन्नता के लिए रखना चाहिए। हाँ, तो उसी प्रकार
जो पहले आपको बताया था जैसे कि जो चैतन्य महाप्रभु का सेवक था निजी सेवक,
हाँ जी,
तो जो छलांग लगा के अंदर गए,
हाँ जी,
तो लेकिन अंदर गया है लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गए चरण दबाने,
हाँ,
तो उससे अपराध हुआ कि
नहीं हुआ लेकिन भक्ति में तो आगे, प्रेम में तो आगे बढ़ गए, चैतन्य महाप्रभु का हृदय जीत लिया,
थोड़ा तो भी अच्छा हो गया।
हाँ, इसलिए नियमों का आग्रह नहीं रखना चाहिए, नियमों को एडर, कई कई नियम गौण नियम जो है
जरूरी था करना।
हाँ,
और वो बाहर की इसलिए नहीं आए क्योंकि अपना था।
हाँ
अच्छा, तब नहीं तोड़ा।
हाँ तब नहीं तोड़ा, तो तब नियम रखा, लेकिन भगवान की सेवा के लिए हम तोड़ दिया, लेकिन अपनी सेवा के लिए अपनी पेट के लिए तोड़ा था। तो ये नियमों का आग्रह नहीं रखना चाहिए, उससे भक्ति विनाश नाश हो जाता है। तो उसका अर्थ है नहीं कि हम मुख्य नियम भी तोड़ दें, जैसे इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन। तो ये जो बड़े बड़े नियम हैं वो भी हम तोड़ दें, सोलह माला, चलो नियम है लेकिन तोड़ देंगे, यहाँ कहा है नियमाग्रह नहीं रखना चाहिए तो सोलह माला, ये बात नहीं हुई। मतलब कि भगवान की भक्ति प्रेम सेवा में आगे बढ़ने के लिए कोई भी नियम तो आप तोड़ सकते हो, लेकिन ये जो मुख्य प्रिंसिपल नियम है वो तोड़ोगे तो भक्ति में आगे बढ़ोगे ना। तो मुख्य जो नियम है वो विमजिकली नहीं तोड़ने चाहिए, मैंने इन अदर वर्ड्स कि नियमों को विमजिकली नहीं तोड़ना चाहिए, मनमानी नहीं तोड़ना चाहिए नियमों को। तो ये नियम आग्रह, जनसंगश्च मतलब कि जन संघ का अर्थ है कृष्ण भावना भ्रावित में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। जन, जन का संग, जिनको भी कृष्ण भक्ति में रस नहीं है, जन संग जिनको भी कृष्ण भक्ति में रस नहीं है, उनका संग करने से हमारी भक्ति नाश होती है। क्यों? कि उन लोगों को कृष्ण भक्ति में रस ही नहीं है, और वो आपको वही सिखाएंगे जिनमें वो कन्विंस है। जन सामान्य माया में कन्विंस है, तो अगर हम उनका संग करेंगे तो वो हमको माया सिखाएंगे। अगर हम बलवान हैं तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर जनसंग करने से हमारा चित्त प्रदूषित होता है, इसलिए जनसंग का त्याग करना चाहिए। जिनको कृष्ण भक्ति में रस नहीं उनका त्याग करना चाहिए। तांदेर चरण सेवी भक्त सन्निवास, जन्म में हो यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सद्गोस्वामियों का चरणों की सेवा, तांदेर चरण सेवी सेवा करके भक्त सन्निवास, भक्तों के संग में वास करूंगा, और यही मेरी जन्म जन्मांतर अभिलाषा है। सतसंग छाड़ी कैनु असत विलास, ये कारण लागी हम कर्ण बंद पास। सतसंग, सत का संग करना चाहिए। सत मतलब साधु, शास्त्र, गुरु, इनका संग करना, सतसंग भगवान श्री कृष्ण, इनका संग करना चाहिए। जन संगश्च, तो जन संग से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और उदाहरण देते हैं कि व्यापार जगत में स्टार, स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती है। तो संस्थाओं में क्या होता है कि सब संग करने जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ एक दूसरों का संग करने के लिए लोग जाते हैं, और वो संग कॉमर्स के लिए होता है या गैम्बलिंग के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए होता है। तो ऐसे ये है जनसंग, उनको त्यागना चाहिए। जनसंग लोलियम का मतलब है कि लोभ मतलब कि पेज 24 लालच के अंतर्गत योग साधक मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मन माना भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। सो लोलियम लोभ, किसका लोभ? भौतिक संपत्ति का लोभ, ब्रह्म में लीन हो जाने का लोभ, मुक्ति का लोभ, भौतिक इच्छाएं कर सब इच्छाएं की तृप्ति करने के लिए लोभ, तो ये लोभ जो है उससे हमारी भक्ति नाश होती है। वैसे भी लोभ ये अंतर शत्रु है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य वगैरह, ये लोभ जो है लोभ से हमारी भक्ति नाश हो जाती है। वास्तव में संसार की संपत्ति संपदा कृष्ण की है, और प्रत्येक जीव को चाहे वह मनुष्य हो या पशु, यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। तो संपत्ति सभी भूमि गोपाल की विनोबा सर्वेदम इदम खल्व ब्रह्म, या तो ईशावास्यम इदम सर्वम, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगतां जगत एन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कश्यसित धनम। तो हमको चाहिए कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सर्व एवरीथिंग एमिनेट एंड इनएमिनेट स्थावर जंगम, सब कुछ भगवान का है, ईश का, ईश मीन्स भगवान, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगतां जगत येन त्यक्तेन भुंजिता, जो भगवान ने आपके भाग्य में दिया है आपका कोटा, इतना ही कोटा ग्रहण करना चाहिए। येन त्यक्तेन भुंजिता, इतना ही हमको उपभोग करना चाहिए। माग्रद कस्यसि धनम, दूसरों के धन पर हमारा पंजा नहीं लगाना चाहिए, कुछ दूसरों के धन को छीन लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो ये है लोभ, लोभ नहीं करना चाहिए। हमारे भाग्य में जो है हमको मिलना ही है, हमको मिल ही जाए, थोड़ा सा प्रयत्न कर लेने से जो मिल जाता है बस वही हमारा है, और उससे संतुष्टि, और यही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च सर्वीर भक्ति विनश्यति, ये छह चीजों से भक्ति नाश होती है। और अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्राण प्राण से शरण ग्रहण करके भक्ति के मार्ग में उपयुक्त छह अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। भक्ति के मार्ग से छह अवरोधों से हमको बचना चाहिए। तो ये श्लोक के बारे में कोई सवाल, यानी क्वेश्चन एट ऑल? हाँ, 15 पे
उपेक्षा लाइन नंबर फोर
उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना,
शुरू में
श्लोक में लाइन नंबर फोर आग्रह जन अत्यधिक उपेक्षा, मतलब उपेक्षा मतलब इनडिफरेंट टू दी रूल्स एंड रेगुलेशन, उपेक्षा करना मतलब कि नियमाग्रह, नियमों का उपेक्षा करना। जो कृष्ण भक्ति में नियम हमको आगे बढ़ाता नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में जो नियम हमको आगे बढ़ाता नहीं, वो नियम की उपेक्षा करनी चाहिए, वो नियम को तोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उपेक्षा, अत्यधिक उपेक्षा। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी,
मुक्ति की भी अपेक्षा
है। हाँ जी,
वो बांधती है,
बिल्कुल बांधती है मुक्ति।
लेकिन जैसे मोक्ष पे, जैसे मुक्ति या मोक्ष या निर्वाण एक ही शब्द
है। हाँ, तो ये मुक्ति बात, निर्वाण मुक्ति बांधती है हमको। आरुह्य कुच्छेन परम पदम पतंती अधः, जो ब्रह्मवादी हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति, सायुज्य। तो ये सायुज्य मुक्ति जो है उसमें प्रेम, कृष्ण भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का जो विनिमय आदान प्रदान होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए सायुज्यम ये नरक की तरह है। कैवल्यम नरकायते द्वादश पूर्व आकाश पुष्पायते विधि महेंद्र आदि कीटायते विश्वम सर्वम सुखायते प्रबोधानंद सरस्वती। तो कैवल्यम नरकायते, कैवल्य मुक्ति नरक की तरह, नरक की तरह। तो हमको मुक्ति नहीं चाहिए,
कृष्ण प्रेम
चाहिए। और हमको अपेक्षा किस चीज की भी अपेक्षा कृष्ण से, भगवान से नहीं है। कृष्ण हमारे हितेश्व हैं, हितेच्छु हैं, तो हमारे लिए जो भी करेंगे सही करेंगे। इसलिए जो भक्ति हैं ये अन्या विलासिता शून्य में, अन्या अभिलाषा शून्य। तो इसलिए ये मुक्ति जो है उनकी भी आशा छोड़नी चाहिए। मुक्ति सिद्धि कामी, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम कृष्ण भक्त ही शांत हो सकता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि और कामी ये सब सकल अशांत होते हैं, सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये है दूसरा श्लोक।